हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 35 एंड 36। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरांतम्, अत्यैव मे विशतो मानसराजहंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ता, स्मरतव्यं सततं विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चे, सर्ववित्थि निषेधास्यो, एतयोरेव किंकर, आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम, रम्या काशिदुपासना व्रजवधु, वर्गेन या कल्पिता, श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममालम, प्रेम पुमर्थो महा, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा। वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा, पीतांबर धरुण बिंब फल धरोष्ठा, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात हरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जानि, अहो बकियं स्तनकालकूटं जिघांस्ययापा ययदप्यसाध्वी, लेभे गतिं दात्युचितां ततोऽन्यम्, कं वा दयालुं शरणं व्रजेन।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तितम् जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंध अध्याय 16 जिसका शीर्षक है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। श्लोक संख्या 35। भगवान श्री कृष्ण के सदृश्य इन अत्यंत ही मधुर शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। पृथ्वी महारानी अपने शोक का अपने दुख का वास्तविक कारण बताते हुए कहती हैं,
कावा सहित विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरस्मित वल्कुचल्पै स्थैर्यं समानमहरन् मधुमाननीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रि विटङ्किताय का वा सहित विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरस्मित वल्कुचल्पै स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीना रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रि विटङ्किताय का वा सहित विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरस्मित वल्कुचल्पै स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रि विटङ्किताय
का वा सहित का मतलब कौन वा मतलब या तो सहित सहन कर सकता है विरहम वियोग पुरुषोत्तमस्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण का प्रेममयी अवलोक चित्वन रुचिरस्मित मनमोहक मुस्कान वल्कु जलपय हृदय को बहाने वाली बोली स्थैर्यम गंभीरता समानम प्राणाय संबंधी क्रोध अहरन यानी जीता मधु प्रियतमा मानिनी नाम सत्यभामा जैसी स्त्रियों का रोम उत्सव प्रसन्नता से रोमांच मम मेरा यत जिसका अंग्री पाऊं विटंकितानी अंकित अनुवाद अतेव ऐसा कौन है जो उन भगवान की विरह को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्राणाय क्रोध हाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे मेरी यानी पृथ्वी की सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि भगवान तथा भगवान की हजारों रानियों के मध्य घर से जाने पर वियोग की अनेक संभावनाएं थीं, लेकिन जहां तक पृथ्वी का संबंध है, भगवान के चरण कमलों को तो पृथ्वी पर पड़ना ही था, अतीव वियोग विरह की कोई संभावना ही ना थी। किंतु जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर अपने दिव्य धाम चले गए, तो पृथ्वी की वियोग भावना अत्यंत तीक्ष्ण हो गई। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालम् पंगुं लंघयति किरम् यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणम्। पृथ्वी जो कि बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि इस संसार में मनुष्यों के अपराधों के कारण आज जो मनुष्य इस संसार में बहुत सारे अपराध करें, तो पृथ्वी ने पहले बताया कि मेरे दुख का कारण यही है कि राजा जो है वो गलत कार्य करते हैं, प्रजा का शोषण करते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। जैसे माँ बहुत दुखी होती है ना, पृथ्वी को जैसे हमने कल पढ़ा, वो हमारी माँ जैसी है। तो बच्चे जब दुराचारी हो जाते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो माता को बहुत कष्ट होता है। और क्योंकि आजकल इस कलयुग में लोग धर्म के सारे विधानों को भूल गए हैं, अधर्म कर रहे हैं, कोई भी विधि विधान धर्मों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसके कारण पृथ्वी को बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है। और पहले हमने पढ़ा कल श्लोक नंबर 34 में कि पृथ्वी ने कहा कि जब मेरे ऊपर इतने मैं जब नास्तिक राजाओं के द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य भार से भोजन हो जाती हूँ, जब अपराध बढ़ जाता है, तो कृष्ण अपनी कृपा से मुझे उभारने के लिए आते हैं। और जब आपके धर्म को बोला, जब आपके चरण घायल हो जाते हैं, कष्ट होता है आपको, तो धर्म की सुरक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन भगवान आए तो सही, पर यदुवंश में उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से जन्म लिया था, परंतु फिर वो मुझे छोड़कर चले गए। और अब भगवान के जाने की इस विरह को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या, वो कह रही है, कावा सहित विरहम पुरुषोत्तमस्य। ऐसा कौन होगा, क्या कोई इतनी बड़ी विरह वेदना को सह सकता है? इतना कष्ट होता है जब जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमारा प्राण धन होता है, जो हमारी आत्मा को आनंदित करने वाला, जिसके बगैर हम जीने का सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा कौन होगा? कृष्ण के बगैर जीना क्या संभव है? पृथ्वी आज अपना वास्तविक दुखड़ा, वास्तविक कष्ट, वास्तविक जो वेदना उसके हृदय में, जो अग्नि जल रही है ना विरह की, उसके विषय में बता रहे हैं। पृथ्वी महारानी कह रही है, मैं जानती हूँ भले ही कृष्ण सर्वत्र हैं, परंतु जब वो मेरे ऊपर चलते थे, जब उनके चरण मेरे ऊपर चलते थे, जब वे कहते रोमोत्सवो मम यदंग्रि विटंकितानि, भगवान के चरण जब मेरे ऊपर पड़ते थे, तो मैं धूल में धंस जाती थी। और जैसे घास होती है ना, जो घास जैसे हर मनुष्य के शरीर में रोमांच होता है, जब वो बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं, वैसे तो रोमांच के बहुत सारे उदाहरण हैं कि क्यों, लेकिन जब
बहुत ज्यादा आनंद होता है ना, तो आनंद को जब हम बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना वो आनंद, तो हमारा जो हमारे जो शरीर के रोम है ना वो खड़े हो जाते हैं। और पृथ्वी कहती है कि जब भगवान के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे और फिर घास से आच्छादित हो जाते थे मैं, और जो हर्ष से उत्पन्न मेरे रोम मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था, पूरे घास जो थे ना वो सारे खड़े होते थे। और ऐसे मतलब ऐसा वास्तव में इसलिए होता था क्योंकि भगवान के चरण कमल से मुझे इतना आनंद आता था। भगवान के चरण कमल जब मुझे स्पर्श करते थे ना, तो उस आनंद के कारण मुझे इतना रोमांच होता था। और श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक बहुत ही मार्मिक बात बताई। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो कृष्णा जब महल में होते थे अपनी रानियों के साथ, तब रानियों को आनंद होता था, लेकिन फिर वो किसी कार्य से हस्तिनापुर चले जाते थे या फिर कहीं और चले जाते थे या घर से बाहर जाते थे, तो उस समय रानियों को भी वेदना सहनी पड़ती थी। वो भी भगवान के विरह को अनुभव करते थे कि कृष्ण अभी तक नहीं आए हैं, पता नहीं कब आएंगे। वो भी विरह को महसूस करती थी, विरह का अनुभव करती थी। लेकिन चाहे किधर भी चले जाएं भगवान, चाहे हस्तिनापुर में हो, चाहे महल में हो, चाहे बाहर हो, चाहे किधर भी चले जाओ, चाहे वृंदावन में हो, चाहे द्वारिका, पृथ्वी महारानी को इस विरह वेदना का कभी भी आस्वादन नहीं हुआ। जब तक भगवान इस भौतिक जगत में थे तब तक पृथ्वी का उनके साथ सानिध्य था ही था, लेकिन आज जब भगवान ने इस भौतिक जगत को छोड़ दिया है तो पृथ्वी महारानी भगवान के इस विरह को नहीं सह सक रही हैं। हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं कि वैसे तो साधारणतया क्या होता है, हम किसी साथ दोस्ती करते हैं, कुछ दिन साथ रहते हैं और फिर जब वो कहीं चला जाता है तो ऐसा होता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, दिखता नहीं है तो प्रेम मतलब याद नहीं आता। लेकिन जिसके साथ हमारा बहुत गहरा स्नेह होता है, जिसे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वो अगर कहीं चला जाता है, जैसे अगर किसी माता की संतान कहीं चली जाती है, फिर चाहे कुछ भी हो, माता अपनी संतान को नहीं भूलती, वो हर क्षण याद करती है, कुछ बनाती है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे पुत्र को कितनी अच्छी लगती थी। और भी हर क्षण जब जब थोड़ी सी तबीयत खराब होती है तब अपनी संतान की याद आती है, जब घर में कोई खुशी होती है, मतलब कुछ भी होता है तो बार बार अपनी संतान की याद आती है। उसी तरह यदि किसी प्रियतमा का प्रेमी पति, यदि किसी पत्नी का पति कहीं चला जाता है तो और है ना वो यहाँ पर अकेली होती है, तो भले उसको कितना ही सुख मिल जाए लेकिन वो अपने पति को भूलती नहीं है, वो हर क्षण अपने पति को स्मरण करती है। इसी तरह ये तो भौतिक प्रेम है, इस भौतिक जगत में कहीं पर भी वास्तविक प्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रेम भी जब गहरा होता है तो फिर हम विरह को नहीं सह सकते। परंतु जहां पर वास्तविक वेदना जो है, जब कृष्ण का विछोह होता है, जब कृष्ण हमसे दूर जाते हैं, तो उस प्रेम को, उस प्रेम के विछोह को, विरह को सहन करना असंभव हो जाता है। और वैसे इस भौतिक जगत में क्या होता है, जब विछोह होता है, विरह होता है, तो उसका केवल दुख ही होता है, केवल कष्ट ही होता है। लेकिन ये जो भगवान के साथ जो विरह है उसमें दुख ऐसा होता है कि उस दुख के अंदर भी आनंद होता है, क्योंकि भगवान के साथ कोई भी संबंध वो कष्टप्रद नहीं होता है। अब क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं और हमारे हृदय के अंदर वो आध्यात्मिक प्रेम नहीं है कृष्ण से, उस आध्यात्मिक प्रेम के विरह का विछोह जो होता है, उसका जो अनुभव होता है, वो हम नहीं कर सकते। हम इस संसार में जो विरह है वो कितना दुख देता है उसको तो अनुभव करते हैं, लेकिन यही प्रेम जब कृष्ण के साथ किया जाता है तो उस विरह के अंदर भी एक आनंद होता है, और उस आनंद को शब्दों में बताया नहीं जा सकता। जिसने उस आनंद को रियलाइज किया है, जिसने उस आनंद को अनुभव किया है केवल उसी इस विरह भाव को बता सकते हैं, उसको परिचित और इस विरह भाव, इस विप्रलंबा भाव को परिचित कराने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में आए। और चैतन्य महाप्रभु इसी विरह भाव का ही अनुभव कराना चाहते थे हमें। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको महाप्रभु से ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि कृष्ण के विरह में एक जीव की क्या स्थिति होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टकम में बताते हैं, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे। युगायितं निमेषेण, निमेषेण एक जो निमेष होती है ना, मेरी एक पलक गिरती है उतना भी समय तुमसे दूर होना कृष्ण, इसके लिए इतना भी समय मुझे वर्षों के समान लगता है। जब तुम मेरे साथ होते हो तो वर्ष भी एक पल में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इतना कठिन है तुम्हारे बगैर जीना कि एक एक पल एक एक वर्ष के समान गुजरता है। समय इतना भारी हो गया है कि समय को गुजारना असहनीय हो गया है, समय गुजरता ही नहीं है। इसलिए युगायितं निमेषेण और चक्षुषा प्रावृषायितं, मेरे नेत्रों से वर्षा की तरह जल बह रहा है, ऐसा लगता है कि अब वर्षा ने बादल की बजाय मेरे नेत्रों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। और मैं कितना भी कोशिश करूं इन नेत्रों से बहते हुए इस वर्षा को जो कि तुम्हारे विरह में बह रही है तो रोक नहीं पा रही हूं, और उसके अतिरिक्त ये जो विरह है अब इतना असहनीय हो गया है कि इस भौतिक जगत में कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता। शून्यायितम जगत सर्वम, ये पूरा संसार मुझे शून्य सा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लगता है कुछ भी अच्छा नहीं है। तुम्हारे बगैर कोई भी वस्तु मुझे पसंद नहीं है, कोई वस्तु में मुझे आनंद नहीं आता है, मुझे केवल तुम्हारा सानिध्य, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा संग ही मुझे आनंदित कर सकता है। इस भौतिक जगत की कोई वस्तु मुझे आनंदित नहीं कर सकती। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें महाप्रभु की इन्हीं शिक्षाओं को प्रचार करना चाहिए कि जीव भगवान से दूर है इसीलिए दुखी है। आज हम सब अपने अपने दुख का एक अलग कारण बताते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी आत्मा तड़प रही है। शरीर को क्या दुख है, शरीर तो निर्जीव है। शरीर को अगर आत्मा को निकाल देना तो शरीर को करोड़ टुकड़े भी कर दे, उसका पोस्टमार्टम भी कर दे तो शरीर का भी दुखी होता है। शरीर को कोई दुख नहीं है, आत्मा दुखी है क्योंकि उसे कृष्ण से दूर कर दिया गया है। तो उसी दुख को रियलाइज करना कृष्ण कॉन्शियसनेस है। मैं कृष्ण से दूर हूँ यही दुख है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की इन शिक्षाओं का प्रचार हमें करना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए, चाहे हम कितने अच्छे भक्त क्यों ना बन जाए, कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ अब तो मैं कृष्ण से बात करता हूँ, कृष्ण सदैव मेरे साथ ही है और मैं कृष्ण को अनुभव करता हूँ, कृष्ण मेरी बात मानते हैं, कृष्ण के साथ में लीला करता हूँ या इतना महान भक्त हूँ, इससे नहीं सोचना चाहिए हमें कि हमने ना कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। ऐसी शिक्षा हमें कभी भी आचार्यों के द्वारा नहीं हुई। षट गोस्वामी जो वृंदावन में जो भगवान के नित्य लीलाओं में प्रवेश करते थे, भगवान की लीलाओं को देखते थे, फिर भी वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि हमने भगवान को प्राप्त कर दिया, हम कृष्ण को प्राप्त कर चुके हैं। श्रीनिवास आचार्य अपने षट गोस्वामी अष्टकम में कहते हैं, जब षट गोस्वामी वृंदावन के एक एक वन में घूमते थे और वो भगवान को पुकारते जोर जोर से, वो चिल्लाते थे, वे कहते थे, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंदा सुन कुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालंधि वन्ये कुता गोशंतावति शोतो व्रजपुले खेदे महाविह्वले वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री गोपाल के वो घोषंतावती श्रोतो व्रज बुले वो वृंदावन के जो यमुना का जो किनारा है वहां पर जाके जोर जोर से चिल्लाते थे जोर जोर घोषंता वृंदावन में जोर जोर से चिल्लाते खेदे महाविह वाले वो अपने विरह के इस अग्नि को नहीं सह सकते थे और जोर जोर से कहते थे हे राधे ब्रज हे राधे राधे कहाँ हो राधे ब्रज देवी के हे वृंदावन की राधा रानी हे वृंदावन की महारानी तुम कहाँ चली गई ललिते हे ललिता तुम कहाँ चले गए हे कृष्ण हे नंद सोना कुतो हे नंद के पुत्र कृष्ण तुम कहाँ हो श्री गोवर्धन क्या तुम गोवर्धन के ऊपर तो नहीं किसी कंदरा में तो नहीं छुप गए हो कल्प पाद पले किसी वृंदावन के वृक्ष के ऊपर छुप कर तो नहीं बैठ गए हो कालन दीवानी किसी तुम यमुना के जल में तो नहीं हो कृष्ण हमें बताओ तुम कहाँ हो हर जगह कृष्ण को खोजते थे कृष्ण के विरह को वो सहन नहीं कर सकते थे और यही बात आज पृथ्वी महारानी कह रही है कावा सहित विहारा पुरुषोत्तम इस भगवान के इस विरह को कौन सह सकता है और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यही हमारा आइडियल स्टैंडर्ड है कि हम कृष्ण से विरह दूर है इसीलिए हम इस कष्टमय संसार में हैं और जब हम प्रेम की विरह अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो हम अधिक से अधिक कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए बेताब हो जाते हैं कृष्ण जब गोपियों से कृष्ण दूर चले गए थे महाराज के समय तो वो कृष्ण की लीलाएं कर रही हैं कृष्ण को स्मरण कर रही हैं कृष्ण को महसूस किया जा सकता है अनुभव किया जा सकता है जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ते हैं उसको श्रवण करते हैं तो जब यह विरह वेदना जब अधिक से अधिक हमें बेचैन करने लगती है तो हम अधिक से अधिक श्रवण करते हैं और अधिक से अधिक जब हम श्रवण करते हैं तो कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम और भी अधिक से अधिक बढ़ता है और जब प्रेम अधिक से अधिक बढ़ता है तो हम और भी अधिक इस विरह को अनुभव करते हैं और यही इस जीवन का वास्तविक लाभ है कि हम कृष्ण के प्रेम को अनुभव करें हम कृष्ण के विरह को अनुभव करें और साथ ही साथ पृथ्वी महारानी भगवान के दिव्य गुणों के विषय में बता रही हैं कि भगवान के विरह को कौन सह सकता है और भगवान के अंदर इसे ऐसे दिव्य गुण हैं कि कोई भी अपने आप को कृष्ण से आकर्षित हुए बगैर रोक नहीं सकता वे कहती हैं प्रेमावलोक रुचि रश्मित वल्गु जलतय प्रेमावलोक अवलोक कहते हैं चितवन को वो देखते ऐसे है ना जब वो किसी को देख ले तो ऐसा लगता है जैसे अब तो गया गिरा ये अब इसका कुछ नहीं हो सकता इसको कृष्ण ने देख लिया वो घायल हो जाता है प्रेम अवलोक और उसके साथ एक बार देख के वहीं पर खत्म नहीं करते फिर क्या करते हैं रुचि रश्मिता इतनी मनमोहनी मुस्कान के साथ थोड़ा सा हंसते हैं और फिर उस हंसने के बाद आप कहीं के नहीं रहते बस कृष्ण के हो जाते हो और जब आप कृष्ण के हो जाते हो फिर कृष्ण क्या करते हैं वल्गु जलपय आपके साथ इतनी मनमोहनी और बहाने वाली बातें करेंगे इतना प्रेम से बात करेंगे कि आपको लगेगा कि इस संसार में इसको देखना इसके साथ बात करना इसके अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं, केवल कृष्ण के साथ कृष्ण का संग ही सब कुछ लगेगा। और उसके अतिरिक्त ऐस्त्रियम, आगे बताए स्थैर्यम समान महरन मधुमाननी, ऐसा उनका भगवान जो है वो किसी को भी वश में कर सकते हैं। वो अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान से, सुहावनी चितवन से और मीठी मीठी बातों से हर किसी को वश में कर सकते हैं। यहाँ पर बताया मधुमाननी ना, यानी कि भले ही कोई सत्यभामा जैसी कोई स्त्री हो जो कि बहुत मतलब गंभीर हो, जो हर बात पे बहुत ज्यादा क्रोध करती है, हाव भाव उसके बहुत ज्यादा, उस ऐसी स्त्री को भी वो अपने हाव भाव से, अपनी मीठी बोली से, अपने नेत्रों से आकर्षित कर ही देते हैं। भगवान कृष्ण के अंदर इतना आकर्षण है, कृष्ण के अंदर इतना आकर्षण है कि कोई भी उनकी ओर आकर्षित हुए बगैर रह ही नहीं सकता। इस संसार की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें कृष्ण से प्रेम करने से रोक सके या कृष्ण की ओर आकर्षित होने से रोक सके। जैसे हम किसी विवश हो जाते हैं, किसी कोई स्त्री होती है या कोई पुरुष होता है जो सुंदर किसी स्त्री को या पुरुष को देखते हैं तो कैसे विवश हो जाते हैं, जानते हैं कैसा नहीं करना चाहिए फिर भी उसके बारे में सोचते हैं, उसको देखते हैं। अगर कृष्ण को किसी ने देख लिया तो फिर वो चाहे कुछ भी हो जाए वो कृष्ण की ओर आकर्षित हुए बगैर रह नहीं सकता। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है फिर इतने हजारों करोड़ लोग हैं वो कृष्ण की ओर तो आकर्षित होते ही नहीं है। अगर कृष्ण आकर्षण करने वाले हैं तो वो किस तरह से कृष्ण से आकर्षित हुए बगैर रह सकते हैं? तो भक्तों, ये केवल कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं। केवल और केवल कृष्ण ही अपनी माया शक्ति के द्वारा हमें अपने आप से आकर्षित हुए होने से रोक सकते हैं। ये केवल कृष्ण की माया, कृष्ण अपनी शक्ति के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण यदि ना करे ऐसा तो कोई भी जीव ऐसा हो ही नहीं सकता जो कृष्ण से प्रेम ना करे। तो यहाँ पर यह संभव यह प्रश्न उठता है कि फिर कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं, कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जीव ऐसा चाहता है। जीव को कृष्ण ने पूर्ण स्वतंत्रता दी है। कृष्ण जीव ऐसा चाहता है कि मैं कृष्ण की ओर आकर्षित ना हूं, मैं कृष्ण की माया को प्रेम करना चाहता हूं, माया से प्यार करना चाहता हूं। तो कृष्ण ठीक बोलते, ठीक है अगर तुम तो मेरी माया से आकर्षित होना चाहते हो, मेरी मुझसे प्रेम नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम्हें उसका भी अवसर दूंगा, मैं तुम्हें पूरी स्वतंत्रता दूंगा, मैं जबरदस्ती बलात् तुमसे प्रेम नहीं करवाऊंगा। ठीक है तुम अगर नहीं चाहते तो तुम पूर्ण स्वतंत्र हो, जाओ जिससे जाओ प्रेम कर सकते हो। अगर मैं अपना आकर्षण बरकरार रखूंगा तो तुम किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकोगे। इसलिए भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम न अभिजानाति लोकोहम अजम अव्ययम्। मैं हर किसी सामने प्रकट ही नहीं होता हूँ जो मुझसे प्रेम नहीं करना चाहते, मैं क्यों जाऊं उनके सामने? तो भगवान ने कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचन मे न प्रणश्यति। जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो हर समय मुझे देखना चाहते हैं, जो हर समय मुझसे प्रेम करना चाहते हैं, मैं उनसे कभी दूर नहीं जाता हूं और ना ही उनको कभी खुद से दूर करता हूं। तो यह हमारे विषय कि हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। नाउ बोलिंग अवर कोर्ट, हमारा अपना डिसीजन। हम भगवान से, जिस भगवान ने कह दिया ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, तुम यदि प्रेमी बनकर मेरे सामने आओगे तो मैं तुम्हें प्रीतम के समान प्रेम करूंगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम करना नहीं चाहते, मुझसे दूर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ पूरा वैसा ही सुलूक करूंगा। तो यहां पर पृथ्वी महारानी कह रही है कि अब क्योंकि भगवान मुझसे दूर हो गए हैं तो उनके विरह को सह पाना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। और आगे कहते हैं सुत गोस्वामी, आगे बता रहे हैं तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि
प्राप्त प्राचीन सरस्वती तयोरेवं कथयतो। तयो मतलब इनके मध्य में ये जो बात हो रही थी धरणी और धर्म के बीच में, बेल और पृथ्वी गौ के बीच में, तो इनके मध्य एवं इस प्रकार कथयतो, इस तरह से बात हो रही थी पृथ्वी धर्मयो, पृथ्वी और धर्म के सेंटर में। तदा उस समय परीक्षण राज परीक्षित यानी परीक्षित महाराज राजर्षि जिनका नाम परीक्षित था, ऐसा राजऋषि प्राप्त प्राचीन वो वहां पर आ गया सरस्वती, जहां पर सरस्वती नदी बह रही थी वहां पर आ गया। अनुवाद देखिए, जब पृथ्वी तथा धर्म इस प्रकार बातों में संलग्न थे तो राजऋषि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर आ पहुंचे। अब यहां पर सरस्वती नदी के तट पर यहाँ पर ये बातें कर रहे थे और परीक्षित महाराज ने उनको देख लिया है। अब परीक्षित महाराज किस प्रकार से धर्म को और पृथ्वी से बात करेंगे, क्या उनके मध्य में क्या होगा, वो हम आगे चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया शीर्षक 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।